लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आर्थिक और सामाजिक संकट के बावजूद वे अपना व्यवसाय जारी रखने और अपने समुदायों की सेवा करने के तरीकों की तलाश करने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।
सदा शांति दे दे, हे शांति दाता।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत मधुवन रेडियो के हेड राघव जी के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। सितंबर 2001 को एक ऐसी घटना घटी जो पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करती है कि नफरत किस तरह लोगों के विनाश और दुख का कारण बन सकता है। 21 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमलों में विमानों के टकराने से 2752 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन 4 यात्री जेट विमानों को अपहरण कर 2 विमानों को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना आज हमें चिंतन हेतु प्रेरित कर रही है कि इस नफरत की जड़ कहाँ है, इससे किस तरह कम किया जा सकता है ताकि दुनिया में शांति और अमन चैन लाया जा सके। मधुवन रेडियो के हेड राघव जी का कहना है कि जब तक हम वैश्विक स्तर पर भाईचारा स्थापित नहीं कर सकते, एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, तब तक हम शांति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को एक बड़े परिवार का हिस्सा समझें और इस परिवार में एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे के लिए जीना शुरू करें। आज राघव जी हमें बतला रहे हैं कि वे किस तरह मानव विकास एवं विश्व शांति की कामना करते हुए समाज को हर स्तर पर सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है राघव जी के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
ब्रह्म कुमारी संस्था के जो पूर्व हमारे चीफ होते थे दादी जानकी जी, आप पोप जॉन पॉल II से मिले हुए थे और आप दोनों की वार्तालाप बहुत अच्छी रही थी। उस समय भी हिज होलीनेस ने ये कहा था कि ब्रह्म कुमारीज एक ऐसे पथ पर हैं और एक ऐसी राह पर दुनिया को आगे बढ़ा रही हैं जिसे मानव का विकास भी होता है और वैश्विक शांति भी आगे बढ़ती है। तो वो बात सदा मेरे मन में रह गई और मैंने ज्यादा तो नहीं पर हाँ जरूर 10 से 15 बारी मैंने जरूर हमारे पोप फ्रांसिस की टॉक्स एंड डिस्कोर्सेस को सुना है और मैंने ये पाया है कि कहीं ना कहीं उन सभी में फाउंडेशन यूनिवर्सल पीस और ब्रदरहुड का होता है। और यही ब्रह्म कुमारीज का भी विचार है कि जब तक हम ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन नहीं बना सकते, जब तक हम ग्लोबल लेवल पे ब्रदरहुड नहीं बना सकते, जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी अंडरलाइंग रीजन के, तब तक हम शांति की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को एक बड़े कुटुंब का, एक बड़े परिवार का हिस्सा समझें, जैसा पोप फ्रांसिस भी कहते हैं, और इस परिवार में हम एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे के लिए जीना शुरू करें। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आती है।
मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जैसे आप भी रेडियो से जुड़े हैं और बतला रहे थे कि आप किस तरह समुदाय बना करके लोगों को सेवा दे रहे हैं, आपका मेन मकसद क्या है, किस तरह आप लोगों को सेवा देना चाहते हैं?
रेडियो मधुबन का और रेडियो मधुबन की पूरी टीम का जुड़ने का हम रेडियो से जुड़े उसका कारण भी यही बना, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि कम्युनिटी एम्पावर हो सके, लोग सशक्त बन सकें, केवल महिलाएं या बच्चे नहीं, केवल बुजुर्ग नहीं, केवल ऐसे लोग जो शायद कम एडवांटेज रखते हैं या थोड़े डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, ऐसे नहीं, परंतु समाज का हर व्यक्ति, एवरीबडी इन द कम्युनिटी। केवल आर्थिक सशक्तता संपूर्ण सशक्तता नहीं होती, केवल मानसिक सशक्तता भी संपूर्ण नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं हो पाते, जब हम अपनी इच्छाएं एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर पाते, जब हम खुल के अपनी बात नहीं कह पाते, हम खुल के अपना जीवन जी नहीं पाते, और बहुत लंबे अंतराल के बाद हमें महसूस होता है कि पूरी जिंदगी निकल गई और हमने आज तक ये छोटा सा जो हम काम करना चाहते थे शायद वो भी नहीं कर पाए, हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाए, या हम इस चीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। तो लोग अपने आप को, अपने जीवन को सशक्त बनाएं, यही हमारा मकसद है, और इसी मकसद से हम सब जुड़े हैं, क्योंकि रेडियो मधुबन का मॉडल पूरा वॉलंटरी मॉडल है और हम सब अपने समय अनुसार जो कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं वो करते हैं। तो हम सभी को बांधने का एक सूत्र भी यही बना कि हम समाज के लिए कुछ ऐसा कर सकें जो जो भी हमारे रेडियो के प्रोग्राम को सुने वो कुछ हद तक सशक्त महसूस करे अपने आप को, अपने अंदर ही अंदर। इसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो बच्चों के लिए निकाले हैं जिसमें एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, लाइवलीहुड बिल्डिंग और वैल्यूज एंड मॉरल्स, ये हमारे प्रोग्राम्स का फोकस सदा ही रहता है। तो एजुकेशन से लेकर के उनके करियर डेवलपमेंट तक, प्रोफेशनल इंटरव्यूज तक, स्किल डेवलपमेंट तक, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम युवाओं के लिए करते हैं। इसके अलावा महिलाएं, क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां बहुत गांव के लोग हैं और खेती उनका मेन प्रोफेशन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो ऐसे समय में महिलाएं लगभग दिन के टाइम फ्री रहती हैं और सुबह और रात्रि में अक्सर करके बिजी रहते हैं घर के कारोबार में। तो महिलाओं के लिए ऐसे शोज हैं जहां महिलाएं दूसरे कल्चर के खाने को सीख सकें, कि आप भले मारवाड़ी हैं या गुजराती हैं तो गुजराती क्यूजीन के अलावा पंजाबी चीजें ऐसी कौन सी हैं जो आप सीख सकते हैं, या ऐसे कौन सी मराठी चीजें हैं, या ऐसे कौन सी और कल्चर या दूसरे जगहों की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपने कल्चर अपने घरों में लेकर के आ सकते हैं। उसमें सबसे पहला खाद्य पदार्थ होते हैं कि कैसे आप किसी दूसरे राष्ट्र का, किसी दूसरे शहर का कोई खास ऐसा कुछ बना सके अपने घरों में कि आपके परिवार में सभी को अच्छा लगे, आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। इसके अलावा महिलाएं किस प्रकार से घर की साज सज्जा करें, किस प्रकार से घरों का ध्यान रखें, किस प्रकार से बच्चों की परवरिश करें, किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करके रखें, किसी प्रकार से अपने किस प्रॉब्लम को कैसे डॉक्टर के पास एड्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसे हमने देखा कि गांव में महिलाएं डॉक्टर के पास जाने से भी कतराती हैं। एक ऐसा फीलिंग है समाज में कि हम अपने में ही अपना सब कुछ कर लें, हमें किसी दूसरे के पास जाना न पड़े, परंतु ऐसे अनअवेयरनेस में, बिना जानकारी के हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो महिलाओं को ये सशक्त करना जरूरी है कि आप अपनी बातें खुल करके समाज में जितने लोग हैं उनके साथ कर सकें, उनके पास अपने विचार रख सकें, समाज के प्रति आपके जो विचार हैं वो भी आप समाज के साथ रख सकें।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत राघव जी के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका क्षमा, लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओ, क्षमाशीलता के विषय पर बहुत कुछ लिखा गया है। यह एक दिव्य गुण माना जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, विश्व के सभी धर्म इसका समर्थन करते हैं। अक्सर क्षमा सर्वोत्तम कृत्य होता है। यह आप पर से एक बोझ हटा देता है, जिससे आप हल्का महसूस करते हैं। परंतु क्षमा करना सदैव आसान नहीं होता। यह सीधे आपके अहम पर वार करता है। जब कोई आपसे क्षमा याचना करता है, तब संभवतः आप उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु आप स्वयं को आसानी से क्षमा नहीं कर पाते। स्वयं पर इतना निर्दयी ना बने, क्षमाशील बने। स्वयं से शुरू करें, अपने आप से स्नेही और करुणामय बने। आपका जीवन इस पर निर्भर है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका क्षमा।
अब आज छुट्टी के दिन भर पेपर ही पढ़ते रहेंगे या कोई और काम करना है आज?
शोभा, तुम भी ना, लगता है तुम्हें मेरी छुट्टी का दिन पसंद नहीं है। तभी तो मेरी छुट्टी के दिन आराम करना तुम्हें अखर रहा।
क्या बात करते हैं आप भी।
नहीं नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तो छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। तुम कहकर तो देखो।
मुझे क्या पड़ी है आपको छुट्टी के दिन भी ऑफिस भेजूं। मैं तो ये कह रही थी कि बाजार वगैरह चलना है क्या, कुछ सामान खरीदना है कि नहीं?
तो ऐसा क्यों नहीं कहती तुम?
चलो, आपके समझ में आ गया, मेरे लिए उतना ही काफी है।
ओहो, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता?
मेरा ये मतलब नहीं था।
फिर?
आपकी समझदारी तो बहुत अच्छी है, जिसमें सब कुछ जल्दी समझ आता है ना।
तुम्हारे लाडले संकेत के समझ में भी कुछ नहीं आता।
हाय, अब क्या किया है उसने?
अभी तो कुछ नहीं किया है, मगर उसे कुछ करने में समय ही कितना लगता है। अब उस दिन की बात ले लो, क्या जरूरत थी संकेत को पंडित जी की लड़की को छेड़ने की? क्यों छेड़ा था उसने?
आप भी कमाल करते हैं। अरे, उसने लड़की को कहाँ छेड़ा था, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो वो लड़की बता सकती है, या फिर हमारा बेटा संकेत, कि उसने पंडित जी की लड़की को क्यों छेड़ा था।
तुम भी ऐसे कह रही हो जैसे संकेत ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? अरे, उसकी अकल में ये बात कब आएगी कि उसकी खुद की भी एक जवान बहन है?
मुझे नहीं लगता कि संकेत अब ऐसा कुछ करेगा। अब कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, यार दोस्तों में रहते हैं, तो कुछ मस्ती मजाक कर लेते हैं।
मस्ती मजाक कर लेते हैं, अब जवानों की मस्ती मजाक का क्या यही साधन बचा है कि किसी की बेटी को छेड़ा जाए?
अब छोड़ो भी, जो हो गया उस पर छोड़ो उसे। मैंने संकेत को भी समझा दिया है, वो अब ऐसा नहीं करेगा। बस
अब वो भले ही ऐसा ना करे, लेकिन जो वो कर चुका है पंडित जी की लड़की के साथ बदतमीजी, क्या वो कोई गर्व करने लायक कारनामा है उसका? क्या उससे नाक ऊंची हो गई हमारी?
आप भी क्या बात करते रहते
मैं
हैं?
वही बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे लाडले ने हमारी इज्जत धूल में मिला दी।
अरे, क्या बात करते हैं आप। किसी की लड़की को छेड़ देने से अगर अपनी इज्जत धूल में मिल जाए करती है, तो फिर किसी की लड़की को लेकर भाग जाने से क्या इज्जत बढ़ जाती है और नाक ऊंची हो जाती है?
किसकी बात कर रही हो तुम?
वो मोड़ वाले जगन्नाथ जी की। आखिर उनका लड़का तो सक्सेना जी की लड़की को लेकर भाग गया, मगर फिर भी वो तो सर उठाए घूमते हैं ना।
तुम औरतों में यही आदत सबसे बेकार होती है।
कौन सी आदत होती
यही?
है
यही, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती को बताना। तुम क्या समझती हो, क्या दूसरे की गलती बताने से अपनी गलती छिप जाती है?
मैं अपनी गलती छिपा नहीं रही हूँ, मैं तो दूसरों की बात बता रही हूँ बस।
ये आदत बंद कर दो तुम, इससे ही हमारे बच्चों को शह मिली है, और वे यही सोचकर गलत काम को निसंकोच करते हैं कि दूसरे भी तो ऐसा ही करते हैं। वो तो गनीमत समझो कि मैंने संकेत से उस लड़की को माफी मांगने को कहा तो वो राजी हो गया, और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि पंडित जी और पंडित जी की लड़की दोनों ने ही संकेत को क्षमा कर दिया, वरना अगर वे लोग पुलिस में रिपोर्ट कर देते तो हमारी इज्जत क्या रह जाती।
ये बात तो सच है, बेचारे पंडित जी बहुत ही सज्जन आदमी है, वरना उनकी जगह कोई दूसरा होता तो संकेत को तो क्षमा नहीं करता, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी थी।
वही तो ये तो पंडित जी की सज्जनता ही थी जो उन्होंने संकेत को क्षमा कर मामले को ठंडा कर दिया, वरना उनकी जगह मैं होता तो मैं तो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करके ही मानता।
अब यहाँ भी देख लो, आप में और पंडित जी में कितना अंतर है।
अब आदमी आदमी में स्वभाव का फर्क तो होता ही है। चलो, तुम्हारे बाजार का क्या काम है निपटा देते हैं।
अच्छा अच्छा शुक्ला भाई साहब नमस्कार, आइए।
नमस्कार भाभी। नमस्कार, कहाँ है श्रीवास बाबू?
अंदर है ना, आइए। अरे अरे जूते चप्पल चलेंगे, ऐसे ही आ जाइए आप तो।
नमस्कार भाई साहब।
नमस्कार।
नमस्कार।
क्या हो गया श्रीवास बाबू? सुना था दो दिन आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे।
हाँ, रहना पड़ा शुक्ला जी।
अब कैसे हैं आप?
अब तो ठीक हूँ शुक्ला जी, ईश्वर की दया है।
वो तो बच गए भाई साहब, वरना न जाने क्या हो जाता।
आखिर हुआ क्या था बहन जी?
कोई बड़ी बात हो गई थी?
अब बड़ी घटना ही समझो। हुआ ये था कि हमारी बेटी पलक को एक लड़के ने छेड़ दिया, फिर वह अक्सर पलक को परेशान करने लगा था। तब पलक ने इनको बताया ये सब। जब लड़के को इनको पता हो जाने के बारे में पता चला तो वो आकर पलक और इनसे माफी मांग रहा था। पलक और मैं तो उसे क्षमा कर देने के पक्ष में ही थे भाई साहब।
हाँ, ऐसी बातों को तुरंत निपटा लेना चाहिए।
मगर ये उस लड़के को क्षमा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये तो इतने गुस्से में भरे थे कि सीधे थाने जाकर ही सांस ली और उस लड़के के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी।
हे भगवान, फिर
क्या, लड़की का मामला था भैया। फिर इन्होंने अपने विधायक से भी थाने पर फोन करवाया था और पुलिस को उस लड़के को हवालात में बंद करना ही पड़ा था।
फिर लड़के वालों ने क्या कहा?
अरे उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इनसे ये कहा कि आपके लड़के ने भी तो पंडित जी की लड़की को दोस्तों के साथ मिलकर छेड़ा था, और आपके लड़के की लड़की और उसके बाप से क्षमा मांगने पर उन दोनों बाप बेटी ने भी तो आपके लड़के को माफ कर दिया था ना, तो आप भी बच्चे की गलती समझकर भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उसे।
हाँ और क्या, किस किस से बुराई लेना।
यही मैंने भी समझाया था इन्हें, मगर ये किसी की सुने तब ना, ये नहीं माने। इन्होंने उस लड़के को क्षमा नहीं किया और पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। उस लड़के को पुलिस से पिटवा कर हवालात में बंद करवा दिया था इन्होंने।
ओह।
जब लड़के के मामा को ये सब पता चला तो 3 दिन पहले उसने इनको सड़क पर रोक लिया था और उन्हें संकेत के माफी मांगने और माफ कर दिए जाने की बात याद दिलाई थी। फिर इनसे पूछा कि क्या ऐसी क्षमा ये उसके भांजे को नहीं दे सकते थे। जब इनके बच्चे को किसी ने क्षमा कर दिया तो क्या ये भी किसी को माफ नहीं कर सकते हैं? क्यों राधा?
बिल्कुल कर सकते थे।
बस इसी बात पर लड़के के मामा और उसके साथियों ने इनकी पिटाई करवा दी। वो तो अच्छा हुआ ज्यादा नहीं मारा इन्हें, नहीं तो न जाने कहां कहां और कैसी कैसी चोटें आती इनको।
बुरा मत मानना श्रीवास बाबू, अगर आपके बेटे को किसी ने क्षमा कर दिया था तो आपको भी उस लड़के को माफ कर देना था, मगर आपने ऐसा न करके उसे हवालत की हवा खिला दी।
ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब कि आप किसी को माफ करेंगे तो आपको भी कोई माफ करेगा।
हाँ, अगर आप किसी को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं तो ईश्वर भी आपकी गलती पर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि अगर आपको क्षमा मिली है तो आप भी किसी को क्षमा कीजिए। ये बात हमेशा याद रखने वाली बात है।
यही बात मैंने भी कही थी इनसे, मगर ये नहीं माने। पर शायद अब तो इनको भी सबक मिल गया होगा और अब ये भी यही करेंगे, क्यों जी?
बिल्कुल, अब मैं भी क्षमा के बदले क्षमा में ही यकीन रखता हूँ।
क्षमा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।